अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे यहाँ रमज़ान में उमूमन तरावी का बड़ा अहतमाम किया जाता है और आम तौर पर यह तस्वुर भी पाया जाता है कि गोया तरावी के बगैर रोज़ा ही कबूल नहीं होगा। लेकिन जब हम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इशा की नमाज के बाद तरावी अदा नहीं की थी। तो हम आज के प्रोग्राम में इसी मसले को उठाने की कोशिश करेंगे, इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि इसकी तारीख और इसकी शरीयत क्या है। हमेशा की तरह हमारे बहुत काबिल एहतराम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
तरावी आज का हमारा मौजू है गामदी साहब, बताएंगे हम बड़े मजहबी जोश और अकीदत के साथ तरावियों का एहतमाम किया जाता है जगह जगह, इसकी तारीख क्या है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन इबादात का पाबंद किया है उनका जिक्र कुरान में भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हैसियत से वो हमको मुंतकिल भी हुई हैं। ये बुनियादी तौर पर छः नमाजें हैं। पांच नमाजें तो वही हैं जो हम सब पढ़ते हैं, फजर की नमाज है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लम के लिए कुरान मजीद हमें ये बताता है कि एक जायद नमाज भी थी, उसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह मुजम्मिल में भी हुआ है और सूरह बनी इसराइल में भी। सूरह बनी इसराइल में जहाँ जिक्र हुआ है तो वहाँ अल्फाज ये हैं कि वह मिनल लैल फतहज्जुद बिही नाफिलतल लक, यानी रात को उठकर आप तहज्जुद का एहतमाम किया करें, ये आपके लिए एक जायद नमाज है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छः नमाजें पढ़ते थे, यानी तहज्जुद का भी पूरी तरह एहतमाम करते थे। तहज्जुद के बारे में कवानीन आम नमाजों से ज़रा मुख्तलिफ हैं, पहले उनको ज़रा एक नज़र देख लीजिए। पहली चीज़ यह है कि तहज्जुद हमेशा ताक अदद में पढ़ी जाएगी, यानी तीन रकतें, पांच रकतें, सात रकतें, नौ रकतें, ये कभी दो या चार नहीं पढ़ी जाएगी, एक चीज़ यह है। दूसरे ये है कि आम नमाजों में तो ये किया गया है कि फजर, मगरब और इशा में हम बुलंद आवाज़ से किरात करते हैं और जोहर और असर में हम खामोशी से किरात करते हैं। तहज्जुद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ला तजहर सलाते का व ला तो खाफित बिहा, यानी इसमें ना आवाज़ ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त होनी चाहिए, ये दरमियान की आवाज़ में किरात करके पढ़ी जाएगी।
कोई खास वजह?
वो वक्त ऐसा है। देखिए बात यह है कि ये इंसान सिर्फ मंतिक नहीं है, वो एक नफसियाती वजूद भी है। तो एक नफसियाती वजूद की हैसियत से वक्त की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो वक्त जिसमें हमने खुदा के साथ सरगोशी करनी है। हम जब आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, अपनी माई के साथ कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता बात की अपनी एक लताफत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बुलंद आवाज़ से एक मुकर्रर तकरीर कर रहा होता है तो उसका अपना एक मौका होता है। यानी मैं एक मजमा आम में अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। इसी तरह से हमने अगर कोई तफरी की मजलिस मुनक़द करनी हो तो आमतौर पर शाम के वक्त का इंतखाब करते हैं।
सही बात है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये दीन में भी मलहूज़ रखी जाती हैं, क्योंकि इंसान की नफ्सियात को, उसके जज्बात को मुतल्लिक़ होना चाहिए। तो तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसमें किरात ना तो ज़्यादा बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त आवाज़ से होनी चाहिए, दरमियान की आवाज़ में, जैसे आप अपने परवरदिगार से सरगोशियाँ कर रहे हैं, ये नौयत होनी चाहिए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से तहज्जुद का एहतमाम करते थे, यानी तीन रकतें, पांच रकतें, सात रकतें, ज़्यादा से ज़्यादा जो रकतें आपने पढ़ी वो ग्यारह रकतें थी। बाद रवायतों में तेरह रकतों का जिक्र भी आता है, लेकिन वो ऐसे ही थी कि जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर मगरिब की तीन रकतें पढ़ते हैं और उसके बाद दो नफल पढ़ लेते हैं। तो चूंकि आप पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी तो कभी आपने ऐसा भी किया कि ग्यारह रकतें पढ़ने के बाद फिर दो नफल मजीद पढ़ ली? तो ये रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं कि रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी आप यही किया करते थे, तहज्जुद की नमाज। आप देखिए इसके बारे में कुछ सहाबा इकराम ने सवालात किए जहाँ से तरावी की तारीफ़ शुरू होती है। बस एक सवाल ये किया गया कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरा कुरान याद था और आप तरावी में तहज्जुद की नमाज में हज़रत के साथ कुरान मजीद पढ़ते थे और देर तक उसकी तलावत करते थे, कभी पूरी आधी रात, कभी दो तिहाई रात आप कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। तो सहाबा किराम को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर किसी को कुरान याद नहीं है तो क्या हम रकतों की तादाद बढ़ा सकते हैं? तो ये मालूम होता है कि इसकी भी इजाज़त दे दी गई। इसी तरह बाद लोगों ने यह सवाल किया कि हमारे लिए सुबह के वक्त उठ के, तहज्जुद का वक्त तो आप जानती है ना कि फजर की नमाज से पहले का वक्त है, उस वक्त उठ के नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, तो क्या हम इसको इशा के बाद पढ़ सकते हैं? यानी इशा की नमाज पढ़ने के बाद फारिग होके क्या हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं? एक नमाज है ना जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है, जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया गया है, जिसका कुरान मजीद में जगह जगह जिक्र हुआ है, तो एक मुसलमान या एक बंदा मोमिन की हैसियत से ये तमन्ना पैदा हुई कि हम भी इसका अहतमाम करें। तो इसके बारे में सवालात फितरी तौर पर पैदा हुए, तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको सुबह उठने का इत्मीनान ना हो, या ऐसी कोई मसरूफियत हो, कोई ख्याल करता हो कि मैं उस वक्त उठ के नहीं पढ़ सकूंगा, तो वो इशा के बाद पढ़ लें। तो आप देखिए चंद चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो गई। तहज्जुद की नमाज एक नफल नमाज है, पहली बात। इसमें किरात ना बुलंद आवाज़ से की जाएगी ना पस्त आवाज़ से की जाएगी। इसकी रकतें हमेशा ताक होंगी, यानी तीन होंगी, पाँच होंगी, सात होंगी, नौ होंगी, ग्यारह होंगी। रिसालत मआब रस्म ने इजाज़त दे दी कि इसकी रकतें इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। सहाबा कराम ने जब पूछा तो ये इजाज़त भी दे दी गई कि ये ईशा के बाद पढ़ी जा सकती है। तो अब इसके बाद लोग इसको इसी तरीके से पढ़ने लग गए। कोई सुबह के वक्त उठ के पढ़ता जिस वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, कोई आधी रात में उठ के पढ़ना शुरू कर देता, कुछ लोग ईशा के बाद पढ़ने लग गए। यानी ये हुजूर के ज़माने ही में तहज्जुद की नमाज तहज्जुद के वक्त पर भी पढ़ी जा रही थी और ईशा के बाद भी पढ़ी जा रही थी। एक रात में यह हुआ कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन एतिकाफ में थे। एतिकाफ के लिए खैमा सा लगा दिया जाता था मस्जिद में, मस्जिद के सेन में। उससे आप बाहर निकले आधी रात के वक्त, मस्जिद में कुछ लोग भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे या कुछ इबादत कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने तहज्जुद की नमाज़, ये जहन में रखिए कि वही तहज्जुद की नमाज़ जो आप अपने खैमे में पढ़ते थे, वो मस्जिद में बाहर निकल के पढ़ना शुरू कर दी।
अच्छा।
जैसे ही आपने पढ़ना शुरू की तो थोड़ी सी आप बुलंद आवाज़ से किरात भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, तो जो लोग इधर उधर खड़े हुए थे वो आपके पीछे आ गए। अच्छा, अगले दिन लोगों को बताना शुरू किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बाहर तशरीफ़ लाए थे और आपने नमाज़ पढ़ी थी, तो लोगों में बहुत शौक पैदा हुआ, तो मस्जिद भरना शुरू हो गई। दूसरे दिन भी जब यही हुआ तो तीसरे दिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ नहीं लाए और आपने फिर लोगों को फजर की नमाज़ के बाद ये कहा कि मुझे तुम्हारा शौक देख कर बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि कहीं ये नमाज़ भी तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तो तहज्जुद की नमाज ही है जिसको बाद के ज़मानों में लोगों ने तरावी की नमाज कहा। ये कोई अलग नमाज है ही नहीं,
बेसिकली ये तहज्जुद ही
है। ये तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है जिसको लोग इशा के बाद भी पढ़ लेते थे। हज़रत उमर के ज़माने में वो एक दिन मस्जिद में गए, देखिए वो खुद शरीक नहीं है वहाँ पे, वो भी घर ही में पढ़ते हैं। वो गए और उन्होंने देखा कि मस्जिद में कुछ अजीब सा समा है, यानी दो आदमी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, दो चार ने एक इमाम खड़ा किया हुआ है, क्योंकि कुरान सुनने का लोगों को शौक होता था। तो उन्होंने ये ख्याल किया कि ये नज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, चूँकि उनकी तबीयत में डिसिप्लिन बहुत था और वो चाहते थे कि हर चीज़ नज़म के साथ हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम लोगों ने मस्जिद में आना ही है और इशा के बाद ही नमाज़ पढ़नी है तो एक इमाम मुकर्रर कर लो। तो एक इमाम का तकर्रर उनके कहने के ऊपर कर लिया गया। अब जब एक इमाम मुकर्रर किया जाएगा तो पूछेगा ना कि भाई कितनी रकतें पढ़ाऊँ तुम्हें, तो आम तौर पर लोगों ने कहा कि आप हमें 20 रकतें पढ़ा दीजिए, बल्कि 23।
मगर आपने तो कहा था कि तहज्जुद का जो फिगर है वो ताक है।
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि 23।
अच्छा।
यानी 20 रकतों के बाद 3 रकतों से उसको वितर कर लिया जाता था, ताक बना लिया जाता था। तो 23 रकतें लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद ये एक अलग नमाज की हैसियत से मुतारफ होना शुरू हो गई। तो हकीकत में ये तहज्जुद की नमाज है, ये कोई अलग नमाज नहीं है। हुजूर के ज़माने में ये इसी तरह पढ़ी जाती थी। सहाबा कराम इसको तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ते थे और इशा के बाद भी पढ़ लेते थे। इसके लिए कोई बाकायदा जैसे हमारे यहाँ जमात का अहतमाम होता है, ये हुजूर के ज़माने में नहीं होता था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में नहीं होता था। हज़रत उमर भी खुद शरीक नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ लोगों में नज़म पैदा करने के लिए एक इमाम को मुकर्रर कर दिया और उसने एक मखसूस तादाद में ये पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि मज़ीद तारीख में ये जिक्र मिलता है और रवायतों में ये जिक्र मिलता है कि वो आए और उन्होंने देखा अब लोग बहुत नज़म के साथ ये नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया। और तबसरा ये था कि जिसको छोड़ कर ये पढ़ रहे हो, यानी तहज्जुद के वक्त को, वो इससे कहीं अफजल है।
अच्छा।
और वापस चले गए।
अच्छा।
यानी वो खुद भी इसमें शरीक नहीं हुए। तो सहाबा कराम के ज़माने में इसकी नौइयत ये थी। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर जिस तरह की एक चीज़ त्यौहार की सूरत इख्तियार कर लेती है, इसने भी ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि बड़े अहतमाम से लोग जाने लग गए। अब लोगों को ये याद भी नहीं है कि ये असल में तहज्जुद की नमाज है, इसके पढ़ने के आदाब ये हैं, इसका असल वक्त तहज्जुद का वक्त है, ये सब चीज़ें लोग फरामोश करते हैं।
गांधी साहब, लेकिन आपने कहा रसूल अकरम के ज़माने में जब ये वाकया पेश आया तो रमज़ान का महीना था, रसूल अकरम एतकाफ़ में थे, तो लेकिन ये तरावी की नमाज जो कि बाद में बाकायदा बन गई, ये उस वक्त रमज़ान के बाद कंटिन्यू नहीं होती हमें तारीख में नज़र आई, ये सिर्फ रमज़ान में ही मखसूस थी?
नहीं, ये तो तहज्जुद की नमाज है ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए लोग
सहाबा कराम रोज पढ़ने लग गए थे रमज़ान के बाद भी?
रमज़ान के बाद भी पढ़ते थे बहुत से सहाबा कराम। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, रवायतों में आता है, और आपने उनको फरमाया कि तुम कैसे ये नमाज़ पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज, ये आम दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुदा के साथ सरगोशियाँ करता हूँ और बहुत पस्त आवाज़ के साथ किरात करता हूँ। तो आपने कहा थोड़ी सी बुलंद कर लो।
अच्छा।
इसकी। और हज़रत उमर के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो शैतान को भगाता हूँ और घर वालों को भी जगाता हूँ अपनी किरात से। उन्होंने अपने मिजाज के लिहाज से बताया तो उन्होंने फरमाया नहीं, थोड़ी सी आवाज़ पस्त कर लो।
मगर बाजमात रमज़ान के अलावा हमने नहीं देखा,
बाजमात नमाज तहज्जुद की कभी भी नहीं पढ़ी गई, यानी वही 3 दिन है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आके नमाज पढ़ी, वो भी आपने कोई एहतमाम नहीं किया जमात का। ये देखिए ऐसे ही है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए यहाँ खड़ा हो जाऊँ और कोई पीछे आके जमात बना ले, तो यही सूरत पैदा हुई। तहज्जुद की नमाज एक नफल नमाज है, इसकी कभी जमात का एहतमाम हुजूर के
हजरत
नहीं
उमर
किया
के
गया।
जमाने में भी हमने देखा कि ये सिर्फ रमजान के महीने में ही ये होता हुआ नजर आया प्रैक्टिस,
इसलिए कि लोगों को रमजान के अंदर इबादत का
ज्यादा
शौक होता है। लेकिन ना बहुत से लोग हैं कि जो सारी जिंदगी तहज्जुद नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान के महीने में उनकी ख्वाहिश होती है कि वो तहज्जुद का एहतमाम करें। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इंसानी फितरत ऐसे ही है, यानी जो चीज़ें लाजिम हैं वो तो सारे लोग एहतमाम करेंगे, जो चीज़ें नफल हैं उनका रमज़ान में ज़रा ज़्यादा एहतमाम होता है।
अच्छा ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, तरावी के लोग भी माने बता दें हम।
देखिए जो लोग जब नमाज पढ़ते थे, क्योंकि लंबी नमाज है ना, तो उसके दरमियान में कुछ देर के लिए बैठते हैं, यानी 4 रकतें पढ़ी और बैठ गए।
बैठ गए,
अरबी में जो बैठ के आराम करना उसको तरविया कहते हैं,
अच्छा
और चूंकि इस नमाज में 3-4 मरतबा बैठते हैं
सही,
तो तरविया की जमा तरावी हो गई,
ठीक
उससे
है
यह लफ्ज़ बन गया।
अच्छा
वरना सहाबा इकराम के ज़माने में इस लफ्ज़ से लोग वाकिफ नहीं थे। इसको
अच्छा
सलातुल लैल कहा जाता था या क्यामुल
सही,
लैल कहा जाता था।
तहज्जुद के
हदीस
लिए
की
जो इस्तेमाल,
किताबों में भी इसका जिक्र क्यामुल लैल के
सही,
उनवान से
तो
होता है।
तारीख में कहाँ ये लफ्ज इंट्रोड्यूस
ये उसके
किया गया,
बाद जिस वक्त सहाबा इकराम के ज़माने ही में लोगों ने चूंकि बैठना शुरू कर दिया,
सही
उस बैठने के दौरान में लोग कुछ तस्बीहात भी पढ़ते थे।
सही
बहुत से लोग ऐसे थे कि उधर जमात में 4 रकतें पढ़ ली, दरमियान में कुछ अपने नफल पढ़ने शुरू कर
सही
दिए, तो उससे ये तरावी का लफ्ज़ लोगों के अंदर आम होना शुरू हो गया, और कहीं पहली सदी में आकर ये लफ्ज़ ज़्यादा आम हुआ है,
आम हुआ है,
वरना लोग इसको क्यामुल लैल कहते थे या सलातुल लैल कहते
ठीक।
थे।
नमाज तरावी के हवाले से आज हम गामदी साहब से गुफ्तगू करें। गामदी साहब, इस सवाल का जवाब भी आपके पहले सवाल में तकरीबन आ ही चुका है कि नमाज का, तरावी की नमाज का और रोजे का आपस में क्या क्या नस्बत बनती है। आपने कहा कि कयामुल लैल है जो कि तरावी बना दी गई, तो लेकिन ये बताइए कि अब हम लोग ये समझने लग गए कि इसके बगैर गोया रोजा कबूल नहीं होता, इस पर
ये
आप
दो
क्या
बिल्कुल
कहेंगे?
अलग अलग चीज़ें हैं। रोज़ा एक अलग इबादत है, जैसे हज एक अलग इबादत है, ज़कात एक अलग इबादत है, तो ऐसे ही रोज़ा अलग इबादत है और नमाज़ एक अलग इबादत है। रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का अजर बयान किया है, यानी ये भी बताया है कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है, और जो आदमी रमज़ान का रोज़ा रखता है और ईमान और एहतसाब के साथ रखता है, मन सामा रमज़ाना ईमानम व एहतसाबा, यानी ईमान के साथ और अपना मुहासबा करते हुए, ये देखते हुए कि मेरी ज़िंदगी क्या रही है, मैं उसको कितना संवार सकता हूँ, मुझे आगे क्या करना है।
ऑडिट करना बहुत जरूरी है अपनी
जी
जिंदगी
हाँ,
का,
इसके बगैर तो असल में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते।
सही
इंसान की तरक्की का राज इसी में है कि वो अपना तनकीदी जायज़ा लेता रहे। तो अपना तनकीदी जायज़ा लेते हुए ईमान के साथ अगर किसी ने रोज़े रखे, तो आपने फरमाया कि ये चीज़ उसके गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। गुनाहों की बख्शिश से फिर अच्छी तरह समझ लीजिए मुराद है वो गुनाह जो अल्लाह ताला के हवाले से होते हैं।
सही
बंदों के मामले में जो गुनाह हो जाएगा उसकी तलाफ़ी भी ज़रूरी है, उसके लिए बंदे से माफ़ी हासिल करना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की ये बड़ी बशारत है। इसी तरह ये बात भी हुजूर ने फरमाई कि मन कामा रमज़ान, यानी जिसने रमज़ान में क्याम किया, नमाज़ पढ़ी रात के वक्त, और ख़ास तौर पर नफल नमाज, क्योंकि जो आम नमाज़ें हैं वो तो फ़र्ज़ हैं, वो तो हर आदमी को
सही
पढ़नी है। तो मन कामा रमज़ाना ईमानम व एहतसाबा, उसमें भी यही बशारत दी कि गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़न्बिही,
सही
उसके भी पहले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इससे लोगों के अंदर बड़ी रग़बत पैदा हुई कि वो रमज़ान का रोज़ा भी रखें और वो रात के वक्त नमाज़ भी पढ़ें। रात के वक्त नमाज़ पहले ही से मौजूद थी, तहज्जुद की नमाज़, उसको लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जो लोग सुबह के वक्त उठ सकते थे वो उसी वक्त पढ़ते रहे, जिनको उसमें दिक्कत महसूस होती थी उन्होंने इजाज़त चाही, दे दी गई, ईशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया
सही
लोगों ने।
सर, लेकिन अभी हम एहतसाब की बात कर रहे थे, थोड़ा सा नमाज से हटके सवाल है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जो हुकूक लिबाद में जो कमी बेशी हुई है हमें उसकी तलाफी भी करनी है, लेकिन बाज़ बात ये होता है कि हमें नदामत होती है अपने किसी काम पर, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उस शख्स के सामने जाके माफ़ी के खास्तकार हों, और बाज़ बात ये भी होता है कि कभी इंतकाल हो चुका होता है उस शख्स का, तो कोई और तरीका है कि किसी तरीके से हम अपना ये गुनाह धो सकें?
दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपने किसी के साथ ऐसी ज़्यादती की है जिसकी तलाफ़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी का प्लॉट हत्या लिया हुआ है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मुझे शर्म आती है वापस करते हुए, वो तो
माल
करना ही
गसब
पड़ेगा,
है, हाँ
वो करना पड़ेगा।
सही
अच्छा, या किसी को मिसाल के तौर पर गाली दी है,
सही
या किसी के साथ कोई और ज़्यादती की है,
सही
तो इसमें हो सकता है कुछ शर्म का
सही जैसे कि
एहसास
बाज़
हो,
वक़्त हम गीबत इतना आम तरीके से करते हैं, लेकिन किसी में मेरा नहीं ख्याल, बाद में हिम्मत होती है
हिम्मत नहीं
जाके
होती कि वो
बताए
इस तरह
कि
की बात
हमने
कर
तुम्हारी
सके।
बुराई की,
तो अव्वल तो कोशिश करना चाहिए कि हिम्मत करके माफ़ी मांग ली जाए और आइंदा से अपनी इसलाह की जाए। ऐसा ना हो तो कम से कम उसके लिए मगफरत की दुआ करें। उसके किसी पीछे रहने वाले के साथ उसने सलूक कर सकते हैं तो वो करें। ऐसा होता है ना कि आदमी दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी, उसके कोई और अज्जा अकरबा होंगे, उनसे हमको हुस्ने सलूक कर सकते हैं, करें। असल में जिस चीज़ का एहसास दिलाना मकसूद है वो ये है कि इंसानों के मामले में जब हमसे ज्यादती होती है तो इसमें एक फरीक खुदा के साथ इंसान भी बन जाता है, इसलिए इसको आसान नहीं लेना चाहिए। और अगर ये चीज़ हम मुसलमानों की समझ में आ जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी मगरबी अकवाम से ज़्यादा बेहतर हो, यानी हम जो उनके यहाँ खूबियाँ देखते हैं वो खूबियाँ सबसे नुमायाँ हमारे यहाँ नज़र आए, फिर हमारे यहाँ लोग एतमाद के साथ कारोबार करेंगे, ये मुसलमान है, कभी धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, इसके यहाँ मिलावट नहीं होगी। लेकिन अब तो बिल्कुल उलट है, यानी मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि देखें, इस वक्त अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके वालिद को कोई शदीद तकलीफ हो और उसमें आपको कोई ऐसी दवा चाहिए हो जिस दवा में जीने मरने का इन्हिसार हो, तो फिर आपको बताया जाए कि एक दवा हमारी बनी हुई है और एक अमेरिका की बनी हुई है, किसका इंतखाब करें?
अच्छी बात,
तो ये चीज खुद बता रही है, यानी हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम कितनी पस्ती में उतर चुके हैं।
बाज़ हम कहते हैं ना कि वो कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन जो बातें अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है या इस्लाम हमसे उम्मीद करता है वो हमें वहाँ पे ज्यादा नजर आता है।
सारे इज्तिमाई अखलाकियात, देखिए इस्लाम कोई मेरी या आपकी जागीर नहीं है, मीरास नहीं है, इजारा नहीं है, ये एक मैसेज है। यानी देखिए ना, साइंस ने जो तहकीकात की है वो एक मैसेज है ना, उन्होंने बताया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सवाल ये है कि ये अब वहीं रह जाएगा, ये मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है। तो इसी तरीके से मजहबी तालीमात भी आला अखलाक की तालीमात है, उनको कोई अंग्रेज अपना ले, उनको कोई अमरीकी अपना ले, उसकी तहसीन करनी चाहिए, और अगर हम नहीं अपनाए हुए तो हमें शर्म महसूस करनी चाहिए उसके ऊपर। तो इस वजह से जो लोगों से मुतल्लक गुनाह है इनके बारे में हमको बड़ी तवज्जो दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में लोग नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, बहुत कुछ इस तरह के नेकी के काम कर लेते हैं, हज के लिए भी जाने के लिए कतारें लगी हुई होती हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता कि वो अपने दफ्तर में बैठकर किस तरह से लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो इंसानों के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मुकदमात किए होते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होता। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं ऐसे बहुत से नेकोकार लोगों को जानता हूँ कि जो ज़मीनों पर गलत कब्ज़ा किए हुए होते हैं। अच्छा, इससे तो आगे बढ़िए मज़ीद, बहुत फ़ख्र के साथ हमारे माशरे के अंदर ऐसे उलमा हैं जो ये कहते हैं कि ये मस्जिद हमने कब्जा करके बनाई है।
बहुत सारे
आप अगर मस्जिदों का जायजा ले, यानी मस्जिद तो खुदा की इबादत गाह है, गसब की हुई जमीन के ऊपर, यानी गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बना के हम फख्र के साथ उसका इजहार कर रहे होते हैं और इस बात का लिहाज नहीं करते। एक आलिम ने यह कहा और टेलीविजन के ऊपर बैठ कर कहा कि ये तो असल में स्टेट की है ना, लोगों की मलकियत है। उसको ये एहसास नहीं हुआ कि एक फर्द की मलकियत को गसब करना तो एक फर्द का मुकदमा है, ये तो पूरे के पूरे माशरे का मुकदमा है, इसमें तो पूरी कौम आपके खिलाफ खड़ी होगी क़यामत में। तो रिसालत में आप ने फरमाया कि जिसने एक बालिश्त के बराबर जमीन किसी की गसब कर ली तो क़यामत में उसके गले में तौक बनाकर डाल दी जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में रमज़ान में सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है, लोगों को एहतसाब करना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने आपको उस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाई जिसमें यह कहा गया है कि यूं नहीं है कि आपने महज नमाज पढ़ी, मन कामा रमज़ाना ईमानन बा एहतसाबा, यानी आप तरावी के दौरान में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बैठ कर आपको क्या करना चाहिए, अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं करके क्या आया हूँ, आज दिन भर मैंने क्या किया है, आगे क्या करने के मंसूबे बना के आया हूँ। सियासतदानों को सोचना चाहिए वो कौम को धोखा देने के क्या मंसूबे बना रहे हैं।
बड़ी अहम बात है।
तो इस वजह से हर आदमी को अपना मुहासबा करके देखना चाहिए। अगर ये हम मुहासबा नहीं करेंगे अपना, तो फिर हमारा यही हाल होगा कि नमाजें बहुत होंगी लेकिन उनकी रूह खत्म हो चुकी होगी। ये चीज बड़ी जरूरी है।
आमदी साहब, आपने थोड़ा सा जवाब तो उसका दे दिया है कि किस तरह ये रकतें पढ़ती गईं, चूंकि कुरान पाक लोगों को याद नहीं होता था, लेकिन अब हमने देखा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 20 रकत नमाज पढ़ने की, तो क्या यही अफजल है या कम पेशी होती?
अब दो रवैये हैं, एक रवैया वो है जो मिसाल के तौर पर अहले हदीस हजरात हमारे यहाँ इख्तियार करते हैं, वो इसरार करते हैं इस बात के ऊपर कि रसूलुल्लाह सल्लम ने चूंकि 11 से ज्यादा रकतें नहीं पढ़ी तो 11 पढ़नी चाहिए। और हमारे यहाँ जो हनफी हैं या दूसरे बाद अइम्मा के पैरों हैं, वो ये समझते हैं कि हजरत उमर के ज़माने में चूंकि 23 रकत पढ़ने का रिवाज हो गया था, ये 20 रकतें अलग होती हैं और तीन उनमें वितर मिला लिए जाते हैं, 23 होती हैं हकीकत में, तो वो ये कहते हैं कि ये पढ़नी चाहिए, ये दो हैं। जबकि तहकीक की निगाह से देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि 3 पढ़ी जा सकती हैं, 5 पढ़ी जा सकती हैं, 7 पढ़ी जा सकती हैं, 9 पढ़ी जा सकती हैं, 11 पढ़ी जा सकती हैं, 23 पढ़ी जा सकती हैं। इमाम मालिक ये कहते हैं कि उनके ज़माने में मदीने में 49 रकतें तक पढ़ी जाती थी।
अच्छा,
तो इस वजह से ये महज एक झगड़ा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसी वजह से देखें दीन के अंदर कितनी खूबी रखी गई है, हो सकता है कि आप में इतनी हिम्मत हो कि आप 3 रकतें पढ़ लें, तो आप भी उसमें, ये जो आप देखती है ना, ये इशा की नमाज में बताया जाता है 3 वितर है, ये तहज्जुदी की नमाज है, यानी उसी नमाज का एक हिस्सा है تین رکعتیں جو کم سے کم ہیں جن کو عام دنوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں,
صحیح.
کیونکہ جو نماز فرض ہے ہمارے اوپر عشاء کی وہ تو چار رکعت ہی ہے.
صحیح.
آپ نے اگر چار رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گئے.
صحیح.
اس کے بعد جو کچھ ہے وہ نفل ہے, تو نفل نماز کی حیثیت سے لوگ بہتر بھی پڑھتے ہیں.
تو اگر کوئی شخص رمضان میں, کیونکہ سب اہتمام کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہ تہجد کی نماز الگ سے پڑھے اور دیر سے پڑھے اور قرآن پاک کی الگ سے تلاوت کرے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے, چونکہ عام طور پر لوگوں کو قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا, ویسے تو اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ,
آپ نے کہا حضرت عمر نے خود کہا کہ اس سے بہتر وہ وقت,
یہ وقت تو وہی بہتر ہے, اس لیے کہ اصل وقت تو وہی ہے. دیکھیے, یہ تو لوگوں نے اپنی معذوری ظاہر کر کے کہ ہمارے لیے مشکل
ہوگا.
اور آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کے اندر سارے انسان یکساں نہیں ہوتے, یعنی بعض لوگ زیادہ مشقت اٹھا لیتے ہیں, بڑی عزیمت پر زندگی بسر کرتے ہیں, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے رخصت کا کوئی سامان کر دیا جائے. تو انہوں نے پوچھا
کریں اس سے بہتر ہے کہ اگر اجازت مل جائے,
تو اگر اجازت مل گئی تو لوگوں نے اس وقت پڑھنا شروع کر دی, کیونکہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ سارا دن محنت مشقت کر کے آئے ہیں, صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہے. ایسے لوگ بھی تھے, یعنی صحابہ کرام میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا تھا. ایسے لوگوں کی بعض وقت ان کی بیویوں نے شکایت کی حضور سے کہ یہ تو صبح کے وقت بھی نہیں اٹھتے ہیں, تو حضور نے یہ فرمایا کہ جس وقت اٹھو وہی وقت نماز کا وقت ہے. دیکھیے, اس میں بھی بڑی رحمت اور بڑی شفقت ہے.
اچھا,
آپ اندازہ کیجئے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے خیبر کے سفر سے, تو راستے میں بہت تاخیر ہو گئی, لشکر کو حکم دیا گیا کہ پڑاؤ ڈالنے, پڑاؤ ڈالا گیا تو سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے. تو حضور نے بلال سے کہا رضی اللہ عنہ کہ ذرا خیال رکھنا فجر کی نماز کہیں ہماری چلی نہ جائے. سب لوگ سو گئے, بلال بھی سو گئے. سب لوگوں کی آنکھ اس وقت کھلی, یہ معطا میں بڑی تفصیلی یہ روایت بیان ہوئی ہے, آنکھ اس وقت کھلی جبکہ سورج نکل آیا ہوا تھا. تو حضور نے فوری طور پر لوگوں کو وضو کرنے کے لیے کہا اور نماز کی امامت کرائی.
اچھا,
اب نماز پڑھانے کے بعد جب آپ بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, آج تو بہت بڑی کوتاہی ہو گئی. ظاہر ہے کہ نماز چلی گئی تھی, اور نماز چلی بھی کس طریقے سے گئی تھی کہ دن نکل آیا تھا, سورج نکل آیا تھا, یعنی آپ خیال کریں کہ کوئی 8-9 بج گئے تھے جس وقت لوگوں نے نماز پڑھی. تو حضور سے انہوں نے کہا کہ آج بڑی غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا انما التفریط فی الیقظۃ لیست تفریط فی النوم, غلطی اور کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے, سوتے میں نہیں ہوتی.
اچھا,
اور اس طرح گویا یہ چیز واضح کر دی کہ جس وقت آپ, ایک تو یہ نا کہ آپ جان بوجھ کے طے کر لیں کہ مجھے نہیں اٹھنا, ایک یہ ہے کہ نہیں آنکھ کھلی. آپ دن میں بھی مثال کے طور پر آپ ظہر کے بعد لیٹے اور سو گئے اور آنکھ کھلی تو مغرب کے قریب کا وقت ہو رہا, تو اب جو نماز آپ پڑھیں گے وہ قضا نہیں ہوگی. یعنی جس وقت آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کی ادا نماز ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ نماز قضا نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہم جانتے بوجھتے نہیں سوتے رہے. آنکھ نہیں کھلی تو جو وقت ہمارا آنکھ کھلنے کا ہے وہی نماز کا وقت ہے. انسانی معاملات کی ہمارے دین میں اتنی رعایت رکھی ہے,
مطلب
اللہ کی اتنی شفقت ہے,
وہی کہ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا. ہماری کمیوں کا بھی میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے احساس کیا ہے,
ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا.
اور جبر نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ جب احکام دیتے ہیں قرآن مجید میں تو کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا
چاہتا. رحمت ہی
رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر سرکشی نہ ہو. دیکھیے نا, کوتاہی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے, آپ سے بھی ہوتی ہے, ہر انسان سے ہوتی ہے. ایک ہے کوتاہی ہو جانا اور ایک ہے خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جانا. تو سرکشی وہ چیز ہے کہ جو خدا کے ہاں ناقابل معافی ہے, ورنہ تو توبہ ہی توبہ ہے, معافی ہی معافی ہے, رحمت ہی رحمت ہے, شفقت ہی شفقت ہے.
قاندی صاحب, قرآن مجید کا نزول تو ہم سب کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے. رمضان میں ہمارا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹے, کیونکہ ایک ایک نیکی کا کئی کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تراویح میں بھی قرآن ختم کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم تیز تیز خواتین گھروں پہ بھی اپنے ختم قرآن کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں, تو ثواب تو ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن اصل افضل کیا ہے کہ ہم اس کا پیغام کو سمجھیں اور پڑھیں؟
اس سوال کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے. دیکھیے, قرآن یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے, یہ بڑی بابرکت کتاب ہے, اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کر کے اس کو سمجھیں اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو یہ کتاب کے نزول کا مقصد ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں, اس کی آیتوں پر غور نہیں کیا, اس میں اللہ کا جو پیغام دیا گیا اس کو وصول نہیں کیا, تو یہ خود اس کتاب کے ساتھ اہانت آمیز ہے.
عقل والے غور کریں تو اس کا مطلب اپنی عقل ہی نہیں استعمال کر
رہے. عقل استعمال کے لیے دیکھیے, ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی میں اس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان کے لیے سمجھنے کی کتاب بنتی نہیں. میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا ہر بچے کو سیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اور قرآن مجید کا جو اسٹرکچر ہے, جس طریقے سے قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے, اس سے جو الفاظ کی خوبصورتی وجود میں آئی ہے اس کو کوئی ترجمہ نہیں بیان کر سکتا. ان کے اندر بڑی موسیقیت ہے, ان کے اندر بڑا آہنگ ہے, یعنی حیرت انگیز چیز ہے قرآن مجید. ایک عالم نے بیان کیا ہے کہ طرابلس میں جو ایک مشہور کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف مذاہب کے بڑے لوگ شریک ہوئے، تو اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اتنی مذہبی کتابیں ہیں کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، تو ہر مذہبی کتاب کا ایک پورشن لوگ خود منتخب کریں گے ایک حصہ، اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حیرت انگیز چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کو پڑھا جا رہا تھا، یعنی تورات کا کچھ حصہ پڑھا گیا، زبور کا کچھ حصہ پڑھا گیا، تو لوگوں نے سنا، لیکن جس وقت قرآن مجید پڑھا گیا تو اس کی موسیقیت اور آہنگ اتنا غیر معمولی تھا کہ سب کے سب لوگ بالکل حیران ہو کر سننے لگ گئے اس کو، یعنی غیر مسلم بھی جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا، اس کی یہ خوبصورتی ہے۔ وہ تو اس وجہ سے عربی زبان میں قرآن لوگ پڑھنا سیکھے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے انسان کو بڑی ایک روحانی تقویت ملتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں،
اور پہلو بھی شاید اس لیے رکھا کہ لوگ غور کریں تو ان کو ثواب،
ہر نیکی کے اندر جو اجر ہوتا ہے وہ اجر تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ نیکی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو چار پیسے دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے نا، کام اگر درست نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ بڑی ایک دلچسپ بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر 10 نیکی ہیں، تو اگر آپ نے ہر لفظ کو پڑھ لیا تو لفظ سے جملہ تو بنا نہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے میں فرض کر لیجئے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجئے، آپ کے ہر قدم پر میں آپ کو 10 روپے دوں گا، اور آپ ایک قدم اٹھا کے رک جائیں، دے دوں گا
نہیں،
آپ کو اصل میں وہ سارے قدم اٹھا کے مجھ تک پانی پہنچانا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کا جو فہم ہے، مدعا ہے، اس کو پہنچانا ہے پہلے اپنے دل و دماغ تک، پھر اجر ملے گا، یعنی اجر اس طرح نہیں ملے گا۔
تو یہ ہماری اسپیشلی خواتین کے لیے، میری والدہ بھی ہیں، سب کی گھر میں خواتین بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ بتا دیں آپ کہ لوگوں میں عموماً خیال ہی کیا جاتا ہے کہ جی اگر تلاوت نہیں کی عربی میں تو شاید ثواب نہیں ملے گا۔
نہیں نہیں، کیوں نہیں ملے گا، دیکھیے آپ نے
بہترین
مہینہ
ہے،
اس میں قرآن کو سمجھنا چاہیے، بلکہ جو لوگ عربی زبان کا تلفظ ٹھیک ادا نہیں کر سکتے وہ ترجمہ ہی پڑھے، بڑے اچھے علماء نے ترجمے کیوں ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا ہر مکتب فکر کے علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک مکتب فکر ہے جو ترجمہ کرتا ہے باقی نہیں کرتے، دیوبندیوں نے ترجمے کیے ہیں، بریلویوں نے ترجمے کیے ہیں، اہل حدیث نے ترجمے کیے ہیں، اہل تشیع نے ترجمے کیے ہیں، سب لوگوں نے کیے ہیں۔ تو جب سب کے ترجمے موجود ہیں تو ان علماء نے کیوں ترجمے کیے؟ اسی لیے کہ تاکہ قرآن کا میسج، پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو ترجمہ پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کی کتاب میں ہے کیا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک تو قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ جو دعوت اور تبلیغ اور بعض قسم کی ہم تقریریں کرتے ہیں، ایک ہے تعلیم دینا، یہ اور چیز ہے، اس کے لیے استعمال ہی قرآن کو کرنا چاہیے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ ذکر بالقرآن میں یخاف و بعید، آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، تو لوگوں کو نصیحت تو تبھی ہوگی جب ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اچھا قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ نذیر للعالمین، یعنی یہ خبردار کرنے والی کتاب ہے ساری دنیا کو، تو ساری دنیا تک اس کو، اس کے ترجمے کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ سارے لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے اس کے انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں، اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، ان ترجموں کو عام کرنا چاہیے، اور قرآن مجید ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، بڑوں کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ کم سے کم ترجمہ پڑھ لیں۔ میں نے زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں تھا، ان کو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور ان کی زندگی تبدیل ہو
گئی۔ کیا بات ہے، اور کیا لطف آتا ہے جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو خدا کے پیغام کی۔ ایک مرتبہ پھر نماز تراویح کی ہسٹری کی جانب آئیں گے۔ غامدی صاحب، کوئی ہسٹری میں ہم کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں؟ آپ نے پہلے بتایا کہ رسول اکرم اعتکاف میں تھے، باہر آئے، انہوں نے بیسیکلی تہجد کی نماز تھی جیسے پڑھایا۔ کوئی اور اگزامپل ایسا ہمیں دکھتا ہے کہ انہوں نے الگ الگ نماز تراویح، جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ادا کی اور تہجد الگ سے؟
ایسا کوئی موقع رسالت میں آپ سے، یہی 3 دن ہے، یعنی ان 3 دنوں میں بھی آپ دیکھیں، اس میں حدیث میں الفاظ میں فی جوف اللیل، آدھی رات کے وقت، عشاء کے بعد نہیں ہوا یہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے، اس کے بعد تہجد کے لیے آپ آدھی رات کے وقت اٹھے، مسجد میں چند لوگ موجود تھے، غالباً اعتکافی کے لیے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کی نماز پڑھی، اگلے دن لوگ آ گئے، پھر اگلے دن لوگ آ گئے، پھر حضور نہیں تشریف لائے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے وقت آپ خیمے سے باہر نکلے، نماز پڑھائی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس کی وجہ یہ تھی،
تاکید نہ، لیکن اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں حضرت عمر کا زمانہ پہلا تھا کہ جہاں انہوں نے کہا اور کہہ کے چلے گئے کہ بہتر ہے کہ
خود بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔
یہ ایگزیکٹلی یہ پوچھنا تھا کہ کبھی کوئی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ماں حضرت عمر نے جو ہے امامت کی ہو، یا وہ شریک ہوئے ہوں، یا ان کے بعد خلفائے راشدین آئے، انہوں نے
نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی 2.5 سال کا رہا، حضرت عمر بھی، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تب بھی یہ تبصرہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں ان کا تبصرہ بھی نقل ہوا ہے۔
और ये भी बताइए कि हर तरावी जो की जाती है, 5 रोज़ा, 7 रोज़ा, 10 रोज़ा, एक पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है, इसकी कोई ताकीद है, कोई वजह है?
ये रवायत बन गई है हमारे यहाँ।
अच्छा
कुरान मजीद आपको समझ कर पढ़ना चाहिए और इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, वरना ये जो तरीका हमारे यहाँ इख्तियार किया गया इसमें तो बाज़ औक़ात मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ कि लोगों को कोई दिलचस्पी इससे नहीं होती कि वो कुरान सुने।
सही,
यानी एक हवा की रफ़्तार है जिसके साथ कुरान मजीद पढ़ा जा रहा
बिल्कुल,
होता है, देहात में ख़ास तौर पर। यानी आलिम जब या कोई कारी आगे पढ़ रहा होता है तो मालूम होता है कि वो कुछ पता नहीं चल रहा कि अल्फाज कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और पीछे खड़े हुए जो लोग हैं वो भी बस ये है कि ऊँग रहे हैं, उसके बाद रुकू में चले गए, सजदे में चले गए। तो ये इत्मीनान के साथ कुरान के बारे में हमको हुक्म दिया गया कि वरतल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को तहज्जुद की नमाज में ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए,
सही
इसका अहतमाम करना चाहिए।
सही। अच्छा, और क्या तरावी की नमाज सिर्फ जमात में ही अदा की जा सकती है या अकेले भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो?
तहज्जुद की नमाज है ना, यानी पहली बात तो यह है कि ये अलग कोई नमाज नहीं, तहज्जुद की
सही
नमाज। तहज्जुद की नमाज की जमात हुजूर ने गवारा फरमाई,
जी जी सही
तो इस वजह से नमाज जमात आप कर सकते हैं।
सही।
हजरत उमर ने भी
और अगर
जमात से नहीं
अलग
रोका,
अलग से पढ़ना चाहें घर की
अलग
तारीख?
से पढ़ना ही बेहतर है।
अच्छा,
देखिए तहज्जुद की नमाज
तहज्जुद,
में
सही
असल
बात
चीज़
है,
ये है कि आप अलग
खलवत
से
की।
पढ़ें, खलवत में पढ़ें, अपने रब के साथ सरगोशी करें। ये मुनाजात का वक्त है, कोई एक नमाज तो ऐसी हो कि जिसमें हम हो और हमारा परवरदिगार हो, तो इस वजह से
सही,
इसका असल वक्त वही है। हजरत उमर ने भी जो तबसरा किया कि अफसलो मिनल्लती तनामून,
वो वक्त
यानी
है,
जिसको छोड़कर इसको पढ़ रहे हो वो इससे अफजल है।
सही सही। अच्छा, ख्वातीन और मर्दों के लिए कोई अलग से इसमें हुक्म है या ख्वातीन भी पढ़ सकती हैं?
ख्वातीन इबादात के मामले में ख्वातीन और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं है।
सही
देखिए उनको भी अल्लाह की इबादत करनी है, वो करें,
सही
अपने अहतमाम से करें। फ़र्ज़ कर लीजिए कि उनके यहाँ भी कुरान मजीद याद नहीं होता। देखिए जमात की ज़रूरत कहाँ से पैदा होती है, इसमें जमात की ज़रूरत
कोई
यहाँ से पैदा होती
इमामत
है,
करें?
किसी एक को कुरान ज़्यादा याद होता है तो लोग कहते हैं कि चलें जी उसको
सही
खड़ा कर लें, वो पढ़ लें।
सही
हर आदमी को कुरान उस तरह याद नहीं
सही
होता, तो ख्वातीन अपना अहतमाम कर सकती हैं। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे गाँव में
सही
तो नमाज तहज्जुद का भी, तरावी का भी और जुमे का भी
सही सही
ख्वातीन अलग से एक मस्जिद में अहतमाम करती थी, मस्जिद ही उनके लिए ख़ास थी। तो एक ज़माने में हमारे यहाँ ये भी होता था।
सही
अब तो हमने ये कोशिश ये की है कि ख्वातीन बाजारों में जब चाहें निकलें, लेकिन ये कि मस्जिद में आने की जसारत न करें।
लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ तो बाकायदा ख्वातीन के लिए मस्जिद में हिस्सा रखा जाता है,
हमारे यहाँ भी
करवाती
रखना
हैं।
चाहिए, हमारे यहाँ भी इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए। और हुजूर ने तो देखें कोई अलग हॉल भी नहीं बनाया था,
सही,
ख्वातीन उसी मस्जिद में जाती थी, वहीं खुतबा
अच्छा,
सुनती थी, वहीं बैठती थी। मस्जिद नबी में उनके लिए कोई
तो
अलग
अब
बंदोबस्त नहीं किया
ऐसा
गया।
क्यों है कि स्पेशली हमारे खत्ते में, हमारे मुल्क में देखा जाए तो बिल्कुल ये सिलसिला खत्म हो चुका है, बल्कि उलेमाए कराम इसको इनकरेज भी नहीं करते?
ये मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। सच्ची बात यह है कि अगर ख्वातीन का ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा, अगर वो वहाँ नहीं जाएंगी, तो उनके अंदर जो एक दीनदारी की रूह है वो किस तरह कायम रखी जाएगी।
सही
यानी मस्जिद एक बड़ी गैर मामूली चीज़ है, बड़ी रूहानी चीज़ है, उसमें जब आप जाते हैं वहाँ एक माहौल होता है। आप हरम में जाएँ तो हरम में क्या आपके लिए अलग कोई जगह बनाई गई है? ख्वातीन जाती हैं, तवाफ़ करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, बसा औकात ऐन तवाफ़ के दौरान में आप देखते हैं आपके दाएँ या बाएँ ख्वातीन मौजूद होती हैं। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हो गई, ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में, वरना नमाज़ पढ़ें, ख्वातीन जाएँ बैठें। मैंने तो कई हदीसों में ये देखा है कि रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून अपने साथ बैठे हुए मर्द से पूछ रही है कि मैं बात पूरी तरह सुन नहीं सकी हुजूर के, फरमाया ज़रा गुदोहरा दीजिए।
अच्छा
अच्छा, ईद के मौके के ऊपर ख्वातीन ने कहा कि हमारे लिए तो बाज़ वक़्त ऐसे हालात होते हैं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ना होती, तो आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, तुम खुतबा सुनाओ आओ। यानी उनको भी इजाज़त नहीं दी कि आप घरों में बैठी
घर
रहें,
में बैठे
वो
रहे।
आएँ। और उसमें भी क्या किया जाता था, इस तरह से सफ़े बना दी जाती थी, इधर ख्वातीन है इधर मर्द हैं। और रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात मर्दों से अलग गुफ्तगू की, फिर ख्वातीन के सामने जाके अलग गुफ्तगू
बात
की।
है,
तो ये ख्वातीन को हमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए दीन में, दीन
हमने
की
तो
बातों में, इन सब चीज़ों में।
ममनू कर दिया, बल्कि रसूल अकरम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद नबी अपने सवालात भी हम देखते
सवालात
हैं
करती
कि
थी, जाती थी, पूछती थी, रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करती थी, सहाबा किराम के साथ गुफ्तगू करती थी, रास्ते में चलते हुए सवालात पूछती थी। यानी ये जो हमारा माहौल है, जो हमारी माशरत है, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की माशरत है,
अच्छा
और हर कल्चर का असर होता है, तो हमारे ऊपर भी इसका असर हुआ है। वरना ये कि अरबों में इसका कोई सवाल नहीं था, ख्वातीन सब मामलात अंजाम देती थी तहजीब के साथ, अच्छा लिबास पहन के, शराफत के साथ, जो दीन के बताए हुए हुदूद हैं उनके अंदर रहते हुए।
से, तो ये आपने कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट की तहजीब है जो हमने इनहेरिट की है, अरबों की तहजीब हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज में नजर आती है, इसके अलावा जो मुस्लिम दुनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बारे में थोड़ी सी हमें
बड़ी
आगाह
हद
करें।
तक सूरत हाल बहुत अच्छी है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं मलेशिया में रहता हूँ, वहाँ ख्वातीन इतनी बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स के अंदर नमाज़ पढ़ रही होती हैं कि मर्द उतनी तादाद में नहीं पढ़ रहे होते। यानी अगर आप जाए, सुराव कहते हैं वो आमतौर पर प्रेयर रूम को,
अच्छा
और ये लाजिम है कि हर जगह होने चाहिए,
सही,
उनमें ख्वातीन का अलग होता है, मर्दों का अलग
मर्द
होता है। ख्वातीन के प्रेयर रूम के बाहर कतारें लगी हुई होती हैं ख्वातीन, हमारे यहाँ कोई
बहुत
तसव्वुर कर सकता है इस बात का? और
समाज
आप देखिए कि वहाँ पर दूसरे मजाहब के बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, यानी कोई
जी
30-35% करीब चीनी हैं,
चाहिए।
चीनियों में मसीही भी हैं, बुद्ध भी हैं और बहुत से चीनी मजाहब के मानने वाले भी हैं, इसी तरह 10-11% करीब हिंदू हैं। इस सब कुछ के बावजूद कि उनकी माशरत अलग है, उनकी तहजीब अलग है, उनका लिबास अलग है,
सही
वो ये ख्वातीन अपने अपने कल्चर और अपनी तहजीब को पूरी तरह कायम रखे हुए हैं और ज़िंदगी के हर मामले में
सही
कर रही हैं। रात के 1 बजे आप किसी सड़क पर जा रहे होते हैं, टॉल में खातून बैठी हुई है और वही आपके साथ मामला कर रही है।
सही
तो ख्वातीन के ऊपर ये दरवाजे बंद कर देने का जो तरीका हमने इख्तियार किया है, ये मालूम
दुरुस्त
नहीं
है।
कहाँ से आया है, ये ना इस्लाम ने बताया था ना हमारी तहजीब ने बताया था, ये चीज़ हमारे यहाँ पैदा हुई है और अब लोग इसमें बड़े हसास से हो गए।
सही बात है। बहुत शुक्रिया गांधी साहब, बहुत सारी हमारी मालूमात में इजाफा है। बहुत सारे सवाल थे जो कि हम उलमाए कराम से आमतौर पर पूछते हुए घबराते हैं, आपने उनका बहुत आराम से हमें जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, रमज़ान का महीना है, गांधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, नमाज तरावी जो है हज़रत उमर के दौर से ज़रूर शुरू हुई, लेकिन गांधी साहब ने जैसे कि हमें बताया कि हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि खुद हज़रत उमर इसमें शरीक हुए, और उनका कहना था कि जो नमाज़ छोड़कर ये पढ़ रहे हो वो इससे ज़्यादा अफजल है। ज़रूर पढ़ें तरावी की नमाज़, कुरान पाक का ख़त्म करें, लेकिन इसका मकसद हमें अल्लाह का पैगाम समझना होना चाहिए। और जैसे कि गांधी साहब ने कहा कि इस महीने में बेहतरीन अमल यह है कि जब आप तरावी के दरमियान ब्रेक लें या जब जब आपको मौका मिले अपनी जात का एहतसाब करें, और हम सब एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।